एस्थर अध्याय चार पद एक से लेकर बारह तक। जब मोर्देकाई ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्देकाई वस्त्र फाड़ टाट पहन राग डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा, और वो राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा। परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा न थी, और एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। और एस्तर रानी की सहेलियों और खोजों ने जाकर उसको बता दिया। तब रानी शोक से भर गई और मोर्देकाई के पास वस्त्र भेजकर ये कहलाया कि टाट उतार कर इन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें न लिया। तब एस्तर ने राजा के खोजों में से हताक को, जिससे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलवाकर आज्ञा दी कि मोर्देकाई के पास जाकर मालूम कर ले कि क्या बात है और इसका क्या कारण है। तब हताक नगर के उस चौक में जो राजभवन के फाटक के सामने था मोर्देकाई के पास निकल गया। मोर्देकाई ने उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है, और हामान ने यहूदियों के नाश करने की अनुमति पाने के लिए राजभंडार में कितनी चांदी भर देने का वचन दिया है, ये भी ठीक ठीक बतला दिया। फिर यहूदियों को विनाश करने की जो आज्ञा सूशन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी उसने हताक के हाथ में एस्थर को दिखाने के लिए दी और उसे सब हाल बताने और ये आज्ञा देने को कहा कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करें। तब हताक ने एस्थर के पास जाकर मोर्देकाई की बातें कह सुनाई। तब एस्तर ने हताक को मोर्देकाई से ये कहने की आज्ञा दी कि राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों न हो जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने की ही आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूं। एस्तर की ये बातें मोर्देकाई को सुनाई गई। एस्तर ने अपने चचेरे भाई के बारे में सुना कि वो टाट ओढ़कर राख मल के बाहर पड़ा हुआ रोता रहता है। जब उससे पूछा परेशानी क्या है, तब उसने उस आज्ञा पत्र की एक नकल एस्थर को भेजी और सलाह दी कि वो अपने पति अर्थात राजा के पास जाए। जरा सोचे, पति और पत्नी का ये कैसा संबंध है कि राजा ने 30 दिन से उससे संपर्क नहीं किया था, और यदि वो बिन बुलाए उसके दरबार में चली जाए तो मृत्यु दंड पाएगी। यदि वो अपना राजदंड आगे बढ़ाए तो वो सुरक्षित रहेगी। ये पति पत्नी का एक बड़ा ही विचित्र संबंध है। पत्नी अपने पति के पास न जा पाए और सच न कह पाए, इस कारण वो वहां जाने से डरी। अध्याय 4 पद 13 और 14। तब मोर्देकाई ने एस्तर के पास ये कहला भेजा कि तू मन ही मन ये विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों को छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। देख, पहली बात तो यह है कि यदि तू ये सोचे कि राजमहल में रहने के कारण तू राजा की राज आज्ञा से बच जाएगी, तो ये तेरा भ्रम है, क्योंकि तू भी तो यहूदी है। और मरने से बच नहीं पाएगी। यदि परमेश्वर तुम्हें अवसर दे रहा है कि तुम लोगों को बचने में उनका साधन बनो, यदि तुम असफल रही तो परमेश्वर किसी न किसी और को साधन बनाएगा, परंतु तू निश्चय ही मारी जाएगी, तुम्हारे पिता का वंश नाश हो जाएगा। परमेश्वर हमें निश्चय ही मुक्ति दिलाएगा। परमेश्वर के उद्देश्य पूरे होकर रहेंगे। परमेश्वर यहूदियों को जीवित रखेगा, चाहे उन्हें कैसे भी यातना भोगना पड़े। उनकी मुक्ति तो अवश्य आएगी, परंतु तू और तेरा वंश नाश हो जाएगा। कौन जानता है कि परमेश्वर ने तुझे इसी दिन के लिए रानी बनाया? ऐसी परिस्थितियां संयोग से नहीं होती है। बहुत बार लोगों को मैं ये कहते सुनता हूं, तुम्हें पता है मेरे साथ एक अद्भुत संयोग हुआ। परंतु संयोग शब्द मसीह शब्दकोश में नहीं मिलता। परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन पर है, उसकी एक योजना और उद्देश्य है। कई बार जिन घटनाओं को हम जीवन की त्रासदी समझते हैं, वे वास्तव में परमेश्वर की इच्छा पूर्ति का साधन होती है। मैं अपने बीते हुए जीवन को देखता हूं तो पाता हूं कि परमेश्वर का हाथ आरंभ से ही मेरे जीवन पर था। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में ऐसा समय भी आया जब मैंने सोचा कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। मैंने सोचा वो मुझे बिल्कुल भूल गया है और उसका मुझ में कोई ध्यान नहीं है, वो मेरी भलाई नहीं करता है। और ये बहुत ही हतोत्साह करने वाले अनुभव हुए थे। कठिन समयों से मैं आज भी घबरा जाता हूं, फिर भी आज जब मैं सोचता हूं तो पाता हूं कि परमेश्वर हरेक अनुभव को किसी प्रयोजन और उद्देश्य के लिए प्रयोग कर रहा था। वो मुझे तैयार कर रहा है, मेरा मार्गदर्शन कर रहा है, और जो उसने आरंभ से मेरे लिए सोचा था उसे वो पूरा कर रहा था। वो हताश करने वाले सारे अनुभवों जैसे सेवा कार्य में कठिनाई, तंगी के वर्ष, जिंदा रहने के लिए संघर्ष के वर्ष, सब परमेश्वर की योजना का भाग थे कि मैं उस काम के लिए जो उसने सोचा है तैयार हो जाऊं। सबसे पहली बात जो मैंने सीखी वो 17 वर्षों की असफल सेवकाई से संबंधित थी। परमेश्वर मुझे ये सिखाना चाहता था कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, और जो कार्य परमेश्वर करता है उसका श्रेय मैं नहीं ले सकता। इस प्रकार परमेश्वर ने मेरी युवा अवस्था का परिश्रम, सबसे अच्छा समय, बुद्धि, शारीरिक क्षमता, घुंघराले काले बाल आदि सब व्यर्थ कर दिया। इसके बाद ही उसने काम करना आरंभ किया जिससे कि मुझे बुद्धि प्राप्त हो और मैं ये पहचानूं कि परमेश्वर के कार्य और मेरे कार्य में क्या अंतर है। मैं अपने इन 17 वर्षों के कार्य आपको दिखा सकता हूं कि वे कैसी असफलता के वर्ष रहे। आज मैं परमेश्वर के कार्यों को देख सकता हूं और किसी ऐसे मनुष्य के निकट खड़ा हो सकता हूं जो उन्हें देख आश्चर्यचकित हो जाए। लेकिन यह सब आवश्यक था क्योंकि मुझे स्वयं पर काफी भरोसा था। मेरे पास बहुत से तरीके थे, नवीनता थी, और परमेश्वर ने 17 वर्ष में ये सब समाप्त कर दिया। अब जब मैंने अपना प्रयास त्याग दिया तब सब सुंदर है, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है। मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे रात भर जाकर योजना बनाने की आवश्यकता नहीं कि हम क्या करेंगे आदि और कैसे करेंगे। ये परमेश्वर का काम है, ये प्रभु की कलीसिया है। ये जानने के लिए मुझे बहुत समय लगा। परमेश्वर अब तक हर एक घटना में कार्य कर रहा था। मेरे जीवन में अब तक परमेश्वर मेरी अगुवाई करता रहा है, मेरा मार्गदर्शन करता रहा है, जबकि कभी कभी मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया। परंतु परमेश्वर अपनी योजना पूरी कर रहा था। मैंने जब पहली बार कोरोना नाम जगह की कलीसिया की सेवकाई संभाली थी, तब मेरे पास 2 बच्चे थे और कलीसिया में 16 सदस्य थे। मैंने वहां अपने समय के 2 उत्तम वर्ष सेवा की। मैं कठिन परिश्रम करता था, मैं घर घर जाता था और जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया, परंतु 2 वर्ष बाद भी वहां की सदस्यता केवल 17 सदस्यों की ही रही। उसमें 1 सदस्य बढ़ गया था, वो हमारा पुत्र जेफ था। उसका जन्म वहीं हुआ था। वो समय मेरी सेवकाई का कठिन समय था। इसके बाद एक दयालु बिशप ने मुझे प्रेरित किया कि मैं एक बार और प्रयास करूं। इस बार परमेश्वर का हाथ मेरी सेवकाई में था। मैं वहां लोगों से व्यक्तिगत भेंट करता था। यद्यपि वे आराधना में कभी नहीं आते थे, मैं उनसे मिलता था और ये लोग कलीसियाई वर्गों के बंधन से मेरी मुक्ति का एक महत्वपूर्ण भाग बने। जब मैंने वर्षों बाद वहां की सेवकाई त्याग दी, तब इन्हीं लोगों ने मुझसे कहा, आप हमारे घर क्यों नहीं आते कि वहां बाइबल अध्ययन की कक्षाएं आरंभ करें। इसलिए मैंने उनके घर में धर्म शिक्षा की कक्षाएं आरंभ की और उन कक्षाओं ने कलीसिया का रूप ले लिया और मैं परमेश्वर का कार्य देखने लगा। यदि मैंने वे 2 कड़वे वर्ष वहां न बिताए होते और इन लोगों से न मिला होता, तो मैं आज धर्म सेवा में नहीं होता। मैंने इसे पाया क्योंकि वो परमेश्वर का हाथ था जिसे मैं देख सकता हूं। परमेश्वर कार्य कर रहा था और वो आपकी जिंदगी में भी कर रहा है, और आज आप भी ऐसा महसूस करेंगे। परमेश्वर अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है, और कौन जानता है परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए क्या कुछ नहीं दिया। और यही उचित समय है जब आप अपने असफल प्रयत्नों और संघर्षों के बावजूद परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं। जब आप अंततः परमेश्वर की ओर फिरते हैं, आप परमेश्वर को काम करने का मौका दें। यही मेरी समस्या थी। मैं हटीला था। मैं सोचता था कि मैं अपने आप कर लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कर सकता हूं, और मैं वर्षों तक कोशिश करता रहा। मैं परमेश्वर की ओर नहीं फिरा। लेकिन अब कितना आनंद आता है जब मैंने परमेश्वर की ओर फिरना सीखा और परमेश्वर का कार्य अद्भुत तरीके से होता देखा। कौन जानता है परमेश्वर क्या करना चाहता है, आपके लिए उसके मन में क्या है और उसकी योजना आपके जीवन के लिए क्या है। इसलिए एस्थर ने कहा, अध्याय 4:16, कि तू जाकर सूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना कुछ खाओ और ना पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। यह है समर्पण। इसी तरह की प्रतिज्ञा परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। प्रभु, यदि मैं नाश हो गई तो हो गई, परंतु प्रभु मैं इससे करूंगी, मैं जाऊंगी। अध्याय 4:17। तब मोर्देकाई चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया।